हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। निहारिका की आंख तो लग गई, पर नई जगह होने के कारण सारी रात वो ठीक से सो ना सकी। सुबह नींद भी जल्दी ही खुल गई। कुश और मृणाल दोनों को सोया देखकर वो आराम से उठकर बालकनी में चली आई। अब तक की अपनी लाइफ में घूमी तो बहुत जगह थी, पर इंडिया बहुत कम बार आई थी और दार्जिलिंग तो पहली ही बार आई थी। दार्जिलिंग शहर, जिसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, खुद में किसी स्वर्ग नगरी से कम नहीं थी। यहाँ चहुं और बिखरी हरियाली, पर्वत, नदी, झरने आकर्षण का केंद्र थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय थी। सुबह के इस पहर में कोहरे की चादर ओढ़े ये शहर और भी खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ शांति थी। बीती रात हुई बारिश का असर था कि सब कुछ धुला-धुला सा लग रहा था। सूरज अब भी अलसाया हुआ बादलों की ओट में छुपा सुस्ता रहा था। आकाश को काले बादलों ने घेरा हुआ था। पेड़ पौधे, पर्वत, घर सब कोहरे की चादर में लिपटे थे। हवा में नमी घुली थी और सन सन बहती वो सर्द हवाएं जिसमें सिरहन पैदा कर रही थी। सर्दी से बचने के लिए निहारिका ने अपनी बाहों को खुद पर लपेटते हुए खुद को अपनी आगोश में भर लिया और अपनी हथेली से अपनी बाह को सहलाते हुए लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए उन हसीन नज़ारों को अपनी निगाहों में बसाने लगी। अचानक ही उसे अपने कंधे पर भार सा महसूस हुआ और अगले ही पल मखमली शॉल ने उसे अपनी आगोश में समेट लिया और इसके साथ ही मृणाल की चिंता भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। ठंड काफ़ी होती है यहाँ और सुबह के वक्त तो हमेशा ही रहती है। तुम्हें यहाँ के मौसम की अभी आदत भी नहीं है, ऐसे बाहर निकालोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मृणाल की बाहें शॉल को थामे उसकी कमर पर लिपटी थीं और चेहरा निहारिका के चेहरे से सटा था। उसके बदन की गर्माहट निहारिका के बर्फ से सर्द जिस्म को राहत पहुंचाने लगी थी और उसकी बातों में अपने लिए परवाह महसूस करते हुए उसके लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। बीमार पड़ जाऊंगी तो तुम होगे ना मेरा ख्याल रखने के लिए? मैं तो रहूंगा ही, पर फिर भी जानबूझकर ऐसी लापरवाही करना ठीक नहीं है। नया एटमॉस्फेयर है ये तुम्हारे लिए। एक बार बीमार पड़ गई तो जल्दी से ठीक नहीं होगी, इसलिए आगे से जब भी ऐसे ठंड में बाहर निकालो तो जैकेट, स्वेटर, शॉल कुछ भी कैरी कर लेना जो तुम्हें इस ठंड से बचा सके। मृणाल की बात सुनकर निहारिका ने अपना सर हल्का सा घुमाया और मृणाल को प्यार भरी निगाहों से देखने लगी। तुम रहना ना साथ, तुम्हारी मोहब्बत की गर्माहट इन बेजान चीज़ों से ज़्यादा राहत पहुँचाती है। निहारिका का ये जवाब सुनकर मृणाल के लबों पर दिलकश मुस्कान बिखर गई। चलो मैं साथ रहूँगा तो तुम्हें अपनी आगोश में समेटकर इस सर्दी से राहत पहुँचा दूंगा, पर अगर मैं साथ नहीं रहा? मृणाल ने इतना कहा ही था कि निहारिका ने उसकी बात काटते हुए तपाक से आगे कहना शुरू कर दिया। तो मैं शॉल कैरी कर लूँगी। मृणाल की मुस्कुराहट गहरा गई। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे की निगाहों में खोए रहे, फिर निहारिका ने निगाहें सामने की ओर घुमा ली। बहुत खूबसूरत जगह है ये और शांत भी, अजीब सा सुकून है यहाँ। और तुम्हारे आने से आज सालों बाद मैं इस सुकून को महसूस कर रहा हूँ। मृणाल ने उसकी बात पर सहमति जाहिर करते हुए अपनी बात कही और उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को कसते हुए उसे खुद में समीप लिया। उसका ये जवाब सुनकर निहारिका की आंखों सितारों सी चमक उठी। किसी भी जिंदगी में खुद की इतनी अहमियत होना एक अलग सा एहसास था उसके लिए, जो बेहद खास था। तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? और उठ गई थी तो मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने? अकेले यहाँ क्यों चली आई? कुछ पल बाद मृणाल ने सवाल किया, जिस पर निहारिका ने मुस्कुराते हुए सहजता से जवाब दिया। नई जगह है ना, शायद इसलिए नींद जल्दी खुल गई। तुम सो रहे थे, क्या करूं समझ नहीं आया। बेड पर लेटे लेटे ऊब गई थी तो यहाँ चली आई, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जब उठा तो तुम साथ नहीं थी, बाथरूम बंद था और रूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था, तो एक यही जगह बची जहाँ तुम हो सकती थी। इसके बाद मृणाल ने पल भर ठहरते हुए उससे सवाल किया, निहारिका कॉफी पियोगी? इतनी सुबह सुबह कॉफी कहाँ से लाओगे? निहारिका ने चौंकते हुए सवाल किया, जिस पर मृणाल सहजता से मुस्कुरा दिया। मैं बनाऊंगा, बताओ पियोगी? पीऊंगी तो सही, पर कॉफ़ी मैं बनाऊंगी। तुम बस मुझे किचन दिखा दो और कॉफ़ी और चीनी कहाँ रखी है बता दो। निहारिका ने जैसे ही ये कहा, मृणाल ने तुरंत ही ऐतराज़ जताया। बिल्कुल नहीं, नई नई शादी हुई है ना हमारी, अभी तुम्हें इस घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ, और हमारे में नई दुल्हन को इतनी जल्दी रसोई में नहीं जाने देते। मेरी भाभी को मेरी मॉम ने एक महीने तक किचन में कदम नहीं रखने दिया था, उनसे कोई काम नहीं करवाया था। मॉम तो नहीं है, पर अगर वो होती तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा शादी के दूसरे ही दिन किचन में कदम रखता, बहुत डांट पड़ती मुझे। इसलिए एक महीने तक तुम किचन में कदम नहीं रखोगी, कोई काम नहीं करोगी। घर के काम के लिए तीन मेड हैं और खाना बनाने के लिए एक शेफ भी है, तुम बस ऑर्डर देना और सब काम हो जाएगा। और शुरुआत तुम मुझसे करो, अब तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से कॉफ़ी बनाकर लेकर आता हूँ। मृणाल ने निहारिका को आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और झट से वहाँ से चला गया। निहारिका ने शॉल को थामते हुए खुद पर लपेट लिया और मृणाल के बारे में सोचने लगी। मृणाल, तुम अपनी फैमिली को बहुत मिस करते होगे ना, कॉफ़ी की सिप लेते हुए निहारिका ने सवाल किया। पलघर को मृणाल के चेहरे के भाव कुछ बदले, पर लबों पर हल्की सी मुस्कान सजाते हुए निगाहें उसकी ओर घुमा ली। मिस तो बहुत करता हूँ, सबसे छोटा था ना मैं घर में, तो सबका बहुत प्यार मिला था, सबका लाडला था, मॉम डैड भैया भाभी सब बहुत चाहते थे मुझे। इसलिए जब एक साथ मुझसे सबका साथ और प्यार छिन गया तो लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल तन्हा हो गया था मैं, अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। मन में बहुत बार ये ख्याल भी आया कि काश उन सबके साथ मैं भी उस दिन मर जाता, पर शायद मेरी किस्मत में और जीना लिखा था, इसलिए जब वो हादसा हुआ तो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं था। और जब मैं ज़िंदगी से हार गया था, मरना चाहता था, तो कुछ मेरी ज़िंदगी में आ गया। मेरे भैया भाभी जाते जाते मुझे जीने की एक वजह दे गए थे, अपनी आखिरी निशानी मुझे सौंप गए थे। या शायद मैं जिंदा ही इसलिए था कि उनके बच्चे को पाल सकूं, उसे वो प्यार दे सकूं जो उन दोनों ने मुझे दिया था। उस मुश्किल वक्त में माधुरी और धृति ने बहुत सहारा दिया मुझे, कुछ के लिए उनका साथ पाकर मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। अब तो आदत सी हो गई उनके बिना जीने की, हालांकि याद अब भी बहुत आती है सबकी, पर कुछ को देखता हूँ तो हर गम से उभरने का हौसला मिल जाता है। सबके जाने के बाद वही मेरा परिवार था, और तुम मेरी इस छोटी सी फैमिली का एक अहम हिस्सा बन गई हो। मॉम डैड भैया भाभी अब जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे कि मेरी शादी हो गई, कुछ को डैड के साथ माँ भी मिल गई, और अब हम दोनों अकेले भी नहीं हैं। मृणाल मुस्कुरा रहा था, पर निहारिका उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। उसने कॉफ़ी मग रेलिंग पर रखा और पलटकर उसे अपने गले से लगा लिया। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना निहारिका, मैं दोबारा अपने परिवार को खोकर जी नहीं पाऊंगी। मृणाल ने अपनी बाहों में भरते हुए मृणाल ने उससे ये रिक्वेस्ट की थी, जिसमें उसका दर्द और एक डर झलक रहा था। निहारिका ने उसकी पीठ पर अपनी बाहों के घेरे को कस दिया। कभी नहीं जाऊंगी, मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। निहारिका ने कमरे में कदम रखा तो नज़र मृणाल पर पड़ी, जो अपनी टाई बांध रहा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। ये देखकर निहारिका की त्योड़ियाँ चढ़ गईं। सुबह सुबह तैयार हो रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? आवाज़ सुनकर पहले तो मृणाल चौंक गया, फिर उसकी ओर पलटते हुए जवाब दिया, हाँ वो ऑफिस जाना था। तुमने पहले तो मुझे नहीं बताया कि तुम आज से ही ऑफिस जा रहे हो।
अभी असिस्टेंट का फोन आया था, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है जिसमें मेरा प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब यहाँ हो तो तुम्हारा प्रेजेंट होना जरूरी हो गया, अगर यहाँ नहीं होते तो क्या करते? निहारिका भौं सिकोड़ते हुए उसे घूरने लगी। मैं आ गया हूँ, तभी तो मीटिंग आज रख दी। एक्चुअली मीटिंग अगले महीने होनी थी, पर क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री जाने वाला है, फिर 2-3 महीने बाद लौटेगा, इसलिए मीटिंग प्रीपोन हो गई। मेरा आज यहाँ पहला दिन है और तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर ऑफिस जाना चाहते हो? कम से कम आज के दिन तो रुक जाते मेरे साथ। नई नई शादी हुई है हमारी, पहली बार मैं दार्जिलिंग आई हूँ, इतना खूबसूरत शहर है, मौसम भी कितना रोमांटिक है आज, कहीं घुमाने ही ले चलते। निहारिका के चेहरे पर नाराज़गी के भाव उभर आए और गालों को फुलाए वो उसे घूरने लगी। उसे यूं रूठते देखकर मृणाल कुछ परेशान हो गया और प्यार से उसे समझाने लगा, कल ही तो यहाँ आए हैं हम, नई जगह है तुम्हारे लिए, तो ये घर भी तो नया है। आज घर पर रहकर अपने नए घर को देखो, अपना सामान सेट करो, यहाँ रहने और काम करने वाले लोगों से पहचान करो, सफ़र में थक गई होगी तो आराम करो, घुमाने भी ले चलूँगा कुछ दिन बाद, आज मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, पहले ही काफ़ी छुट्टी हो गई है जिसके वजह से काफ़ी लॉस हो चुका है, अगर ये मीटिंग आज नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। निहारिका कुछ पल खामोशी से उसे घूरती रही, फिर मुंह ऐंठते हुए उसे नज़रअंदाज किया और कबर्ड की ओर बढ़ने लगी। उसकी ये खामोशी देखकर मृणाल ने ही आगे कहा, अच्छा सुनो, कुश को साथ ले जाऊं,
शायद ये शांति तूफान के आने से पहले की ही शांति थी, जिसे मृणाल बिल्कुल अनजान था। निहारिका जो पहले ही भड़की हुई थी, मृणाल की इस बात ने उसके गुस्से की आग में पेट्रोल का काम किया और अगले ही पल वो उस पर फट पड़ी। हाँ हाँ, उसे भी साथ ले जाओ, काका को भी ले जाना और यहाँ काम करने वाले बाकी सब नौकरों को भी छुट्टी बोल जाना। मैं अकेले भूतों जैसे इस बड़े से घर में भटकती रहूंगी। निहारिका की अचानक यूं गुस्से से फायर होने पर मृणाल बुरी तरह से चौंक गया और फटी आंखों से अचंभित सा उसे देखता ही रह गया। नाराज क्यों हो रहे हो यार, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा था। तुम्हारे खुद के लिए ये जगह, माहौल और लोग नए हैं। आज करने को भी काफी कुछ है तुम्हारे पास, और कुछ काफी शैतान है, तुम्हें कुछ नहीं करने देगा, एक मिनट चैन से बैठने भी नहीं देगा। सारे दिन उसे संभालना तुम्हारे लिए चैलेंजिंग काम होगा, और अभी वो तुम्हारे साथ इतना घुला मिला भी नहीं है, कहीं परेशान ना कर दे तुम्हें। मृणाल ने बेहद प्यार व नर्म लहजे में उसे समझाने की कोशिश की, पर निहारिका उसके जाने के फैसले से पहले ही भड़की हुई थी, अब बुरी तरह खींच उठी। मुझे परेशान करेगा तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच में तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह होती ना, तो ऐसे छोड़कर नहीं जा रहे होते मुझे। निहारिका, दिखावा नहीं है, सच में मुझे तुम्हारी परवाह है, पर मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। पर कुश को छोड़कर जाऊंगा तुम्हारे पास, मन लगा रहेगा तुम्हारा और जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अब तो अपनी नाराजगी छोड़ दो। बेचारा मृणाल निहारिका के गुस्से से परेशान हो गया था। जितना वक्त उसने उसके साथ बिताया था, उसमें ये पहली बार था कि निहारिका उससे इस कदर नाराज थी, गुस्सा थी, और वो उसे मनाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। निहारिका अब भी गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। मृणाल को जब उसके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने ही आगे कहना जारी रखा, कुछ ज्यादा तंग करे तो धृति से बात करवा देना, उसकी हर बात मानता है और उसके सामने कोई शैतानी भी नहीं करता। और अगर तुमसे ना संभले तो ड्राइवर के साथ उसे ऑफिस भेज देना, मैं संभाल लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, चाहो तो कुश के साथ तुम भी ऑफिस आ सकती हो, पर मैं सोच रहा था कि हमारी शादी की खुशी में पार्टी दूं, उसमें तुम्हें सबसे मिलवाऊं। समझ गई मैं, नहीं आऊंगी तुम्हारे ऑफिस और कुश को भी संभाल लूंगी, निहारिका ने उखड़े स्वर में जवाब दिया और मुंह फुलाए कबट की ओर बढ़ने लगी। वो रूठी हुई थी और उसकी नाराजगी थी भी जायज। मृणाल कुछ पल परेशान सा उसे देखता ही रह गया, फिर धीमे कदमों के चले हुए उसके पास चला आया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। नाराज हो गई क्या? जाना सच में जरूरी है, वरना नहीं जाता। पहले तो अपनी नाराजगी दिखाते हुए निहारिका उसकी बाहों के घेरे से छूटने को कसमसा उठी, फिर उसकी बात सुनकर एकदम स्थिर होकर खड़ी हो गई। जाओ तुम, नहीं हूँ मैं नाराज। सच बोल रही हो? हम्म, पर लग तो रहा है मुझे कि तुम अब भी नाराज हो मुझसे, नहीं जाने देना चाहती मुझे। हाँ, नहीं जाने देना चाहती मैं तुम्हें, पर नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ी सी उदास हूँ, लेकिन मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें। तुम जाकर अपना काम करो, मैं कुश के साथ अपना वक्त बिता लूंगी। अब छोड़ो मुझे, कुश के कपड़े लेकर नीचे जाना है मुझे। मृणाल ने उसे छोड़ तो दिया, पर साथ ही उसके कंधों को थामते हुए उसे अपनी ओर भी घुमा लिया। थैंक यू, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम अपना और कुश का ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो काका को बोल देना, वरना मुझे कॉल कर देना, और अगर कुछ ज्यादा परेशान करे तो मेरे पास भेज देना। अभी तुम्हारे साथ वो इतना घुला मिला नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाएगा, फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम संभाल लोगी उसे। मृणाल ने कोमल स्वर में उसे समझाया और प्यार से उसके सर को चूम लिया। इसके साथ ही उसकी बची खुची नाराजगी भी खत्म हो गई और लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। टू बी कंटिन्यूड।